ओम शांति, ओम शांति। हम सभी को बाबा के समान सर्वगुण संपन्न बनना है। जनवरी मास से भी हमें ब्रह्मा बाबा के समान बनने की याद दिलाता है। तो सर्व गुणों में एक विशेष गुण संतुष्टता है, जिसे सर्व गुणों का सरताज कहते हैं। संतुष्टता के लिए आज अगर हम भक्तों को देखें, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन जिसने भी अपनाया उसके लिए ये गुण बहुत महत्व रखता है, तो हम देखते हैं कि जो सच्चे भक्त हुए भगवान के, उनको भगवान ने जैसे भी रखा वो हर हाल में राजी रहे। बहुत गरीब भी थे कई भक्त, उनको खाने को भी नहीं था। जैसे गुजरात में नरसिंह मेहता बहुत प्रसिद्ध हुए, आप जानते होंगे उनकी कहानी, तो कैसे भगवान ने उनके कार्य किए ऐसे बताते हैं उनकी कहानी में ना? कौन जानते हैं भक्त नरसिंह मेहता की कहानी? अच्छा, काफी जानते हैं। ऐसे ही एक संत रैदास थे, आपने नाम सुना होगा, वो जूते सिलाई करते थे, है ना। भगवान के भजन में लीन रहना, उस लगन में रहना, ये उनका जीवन था और उससे अपना गुजारा चलाते थे। बहुत गरीब थे, एक झोपड़ी में रहते थे। तो एक दिन एक संत उनसे मिलने आए, उनका नाम बहुत था, तो मिलने के लिए आए तो देखा कि कितना साधारण रीति से वो रहते हैं, टूटी फूटी झोपड़ी है, कोई सुविधा नहीं उसके अंदर, और वो जूते सिलाई करते हैं। तो उनको बहुत उन पर रहम आया, तो उनके पास एक पारस पत्थर था। तो पारस पत्थर के लिए ऐसा माना जाता है कि अगर उसको लोहे से छुआ देते हैं तो लोहा सोना बन जाता है। तो उन्होंने उनको कहा कि आप इतना साधारण रीति से रहते हैं, ये आप पारस पत्थर मेरे से ले लो और आपको जितना धन चाहिए उतना धन आप इससे बना लो, आपका जीवन आराम से, आपको ये जूते भी सिलाई नहीं करने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे भगवान ने ये जो दिया है मैं इसमें बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ, मुझे कोई कमी महसूस नहीं होती है। तो फिर भी उन्होंने उनको समझाया कि नहीं, आप इतने प्रसिद्ध संत हैं, आपका जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना अभाव वाला जीवन है। तो जबरदस्ती भी उन्होंने करके, मतलब वो लेना चाहते थे, जबरदस्ती भी करके वो पारस पत्थर उनको देने को कहा। तो फिर उन्होंने कहा कि जब ये इतना कह रहे हैं तो ठीक है, उनकी एक झोंपड़ी में एक आला बना हुआ था, उन्होंने कहा आप यहाँ रख दो इसको, और वो संत ने वो पारस पत्थर वहां रख दिया, फिर वो चले गए। एक महीना करीब लगभग हो गया, वो संत रैदास तो भूल ही गए कि वो कोई पारस पत्थर रख के गए थे, क्योंकि उनको आवश्यकता ही नहीं थी। फिर एक महीने के बाद वो संत फिर आए कि अब तक तो ना उन्होंने पर्याप्त धन बना करके अपना सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, तो अब मैं अपना पत्थर वापस ले लूंगा। और पहुंचे, देखा वही झोंपड़ी है, वही जूते सिलाई कर रहे हैं, रेदासी हालत में है सब कुछ। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा आपको मैंने वो पारस पत्थर दिया था, उसका क्या किया? उन्होंने कहा पारस पत्थर? तब उनको याद आया कि वो कोई पारस पत्थर भी देकर गए थे। उन्होंने कहा आपने जहाँ था उसको वो वहीं रखा होगा, मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि मुझे आवश्यकता ही नहीं है। मैंने देखा उधर तो वही वो पारस पत्थर पड़ा था, फिर उन्होंने ले लिया। कहने का भाव क्या है कि जो सच्चे भक्त थे उनका यही भाव था कि भगवान जिस हाल में रखे उसमें हम राजी हैं, ये उसकी मर्जी है। और यहाँ बाबा हमें संतुष्टता के लिए क्या कहते हैं? बाबा हमें कहते हैं हम बाबा के बच्चे सदा संतुष्ट हैं। कैसे समझे हैं? कैसे संतुष्ट हैं? अभी सुनिए ना मुरली। पहले बाबा की मुरली चली संतुष्ट मणि पर 31 दिसंबर को, फिर अभी भी संडे को संतुष्टता पर मुरली चली। हम बाबा के बच्चे सदा संतुष्ट कैसे हैं? क्या बताया बाबा ने? हाँ जी, प्रसन्न चित्त तो है, वो ठीक है, जो संतुष्ट होंगे वो प्रसन्न भी होंगे, लेकिन हमारी संतुष्टता का आधार क्या है? ये तो भक्तों की बात बताई कि भक्त कैसे हुए, है ना, कि वो जैसे जिस हाल में भगवान ने रखा उस हाल में वो संतुष्ट रहे। कभी उन्होंने इच्छा नहीं की कि भगवान हमें ये, हालांकि लोगों ने भगवान के लिए त्याग भी किया। अब महात्मा बुद्ध थे, महलों में पैदा हुए, राजाई कुल में पैदा हुए, महावीर स्वामी थे, राजाई कुल में पैदा हुए, लेकिन भगवान को पाने के लिए क्या किया? महलों का भी त्याग किया और साधारण रीति से अपना जीवन बिताया। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को भी, हाँ, हमने देखा ब्रह्मा बाबा हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, हाँ, बहुत संपन्न थे, लेकिन जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो एक धक से सब, भगवान मिला माना सब कुछ मिल गया, भाव क्या पाना था सो पा लिया। तो जो हीरे थे वो भी क्या लगने लगे? पत्थर लगने लगे। तो जो भौतिकता है उसको इतना महत्व नहीं दिया। जिन्होंने भी अध्यात्म का मार्ग चुना उन्होंने हद की प्राप्ति, जिसे बाबा कहता है, हद की प्राप्तियों को महत्व नहीं दिया, क्योंकि जो आत्मा चाहती है वो आत्मा को मिल गया। तो अभी याद आ गया बाबा ने क्या कहा संतुष्टता के लिए? हमारी संतुष्टता का आधार है, पाना था सो पा लिया, उसके लिए बाबा ने क्या कहा? एक विशेष स्लोगन है, इच्छा मात्रम अविद्या नहीं। बाबा ने मुरली में कहा, बाबा ने कहा अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में या ब्राह्मणों के जीव में। यानी हम सर्व प्राप्ति संपन्न है। अब दो आधार है, एक तो व्यक्ति अगर सर्व प्राप्ति संपन्न है, भरपूर है, तो भी संतुष्ट है, क्योंकि जो चाहिए जीवन में सब मिला हुआ है, असंतुष्टता की कोई बात ही नहीं है। असंतुष्टता तब होती है जब कोई अप्राप्ति होती है, जिसे बाबा ने कहा स्थूल या सूक्ष्म है। अगर अप्राप्ति है तो असंतुष्ट होते हैं। तो स्थूल प्राप्तियों में कौन कौन सी प्राप्तियां हैं? स्वास्थ्य, संपत्ति, धन, धन और संबंध, ये सब प्राप्तियां हैं। तो अगर ये सब प्राप्तियां हैं तो इसका मतलब सर्वभाग्य हमें मिले हुए हैं। और अगर सूक्ष्म प्राप्तियों की बात करें तो वो है नाम, मान, शान। ये मनुष्य को चाहिए होता है कि थोड़ा मेरा नाम होना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, हमारी भी तो कुछ शान है। तो ये सब प्राप्तियां बाबा ने हमें कराई है। बाबा ने कहा एक के द्वारा सबको एक जैसे सर्व खजाने मिले हैं, एक ही समय पर भी मिले हैं, लेकिन फिर भी बाबा के बच्चे नंबरवार हैं। बाबा ने कहा मुरली में कि इतनी प्राप्ति है आपको, इतनी बेहद की प्राप्ति है कि आप तो क्या, आपकी प्रजा और आपके भक्त, क्योंकि भक्त भी होंगे ना द्वापर युग में, सब देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं तो सबके भक्त भी हैं। तो भक्त और केवल भक्त नहीं, वो भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार से चलते रहेंगे। यानी जो आपकी प्राप्तियां हैं उनके आधार से आपकी इतनी रचना वो चलती रहेगी, इतना अखूट खजाना सबको मिला हुआ है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी असंतुष्ट हो जाते हैं। और क्यों असंतुष्ट हो जाते हैं? क्योंकि जो प्राप्तियां हुई हैं उसकी स्मृति नहीं रहती है, स्मृति से विस्मृति में आ जाते हैं। और अगर स्मृति है भी तो कई बार सिर्फ दिमाग की स्मृति है, माना ज्ञान है सिर्फ, लेकिन उसको अनुभव में नहीं लाया, यानी स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं। तो जब तक स्मृति स्वरूप नहीं बने तब तक वो प्राप्तियों का अनुभव हमें नहीं होता है। और इसीलिए फिर मन हद की प्राप्तियों की तरफ चला जाता है। हद की प्राप्तियां, बेहद की प्राप्ति से जो संतुष्टता की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होने देती। अब हद की प्राप्ति में क्या आ जाता है, अच्छा मकान होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, हाँ, या आज के जो भी सुख सुविधा के साधन है, मोबाइल किस तरह का होना चाहिए, या घर में भी जो भी साधन है वो किस तरह के होने चाहिए, अपग्रेड होने चाहिए, जो भी हम चीजें लेते हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ये हद की इच्छाओं के पीछे जाना, इन इच्छाओं का कोई अंत होता है? एक इच्छा पूरी होती है फिर दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी पूरी होती है फिर। तो बाबा कहता है हद की इच्छाओं के पीछे जाना जैसे पढ़ाई के पीछे जाना, और परछाई को कितना भी पकड़ने की कोशिश करेंगे वो कभी पकड़ में नहीं आने वाली है। लेकिन अगर हम रोशनी की तरफ मुंह कर देते हैं तो परछाई अपने आप पीछे पीछे आने लगती है, यानी परछाई को पीठ कर दो तो फिर परछाई पीछे पीछे आती है। ऐसे ही अगर हम ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहते हैं, सदा ही बाबा के संबंध में हैं, तो हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सहज पूरी होती हैं। उसके लिए हमें कहने की भी जरूरत नहीं है बाबा को। और बाबा के बच्चों का ये अनुभव है कि कोई ऐसे संकल्प, इच्छा नहीं लेकिन जैसे आवश्यकता होती है और उसका एक संकल्प उठा, और वो कैसे आवश्यकता हमारी पूरी हो जाती है हम समझ भी नहीं पाते, उसके पहले बाबा वो पूरी कर देते हैं। है अनुभव ऐसा? जिसको ऐसा अनुभव है वो हाथ उठाओ। देखो कितने भाई बहने हाथ उठा रहे हैं। तो इसका मतलब बाबा जरूर, जैसे ही हम बाबा को याद करते हैं, बाबा को मालूम है, क्योंकि जैसे माँ बाप जानते हैं हमारे बच्चों की आवश्यकताएं क्या है, वो हमारा माता पिता है ना, उसे भी पता है। तो बाबा हमेशा कहता है आवश्यकता और इच्छा में अंतर होता है। फिर हम इच्छा को अच्छा में बदल लेते हैं, हम इच्छा नहीं कहते, हम कहते हैं अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है ना इसलिए होना चाहिए। लेकिन अगर वो इच्छा का रूप हो गया तो फिर बाबा उसको पूरा नहीं करेगा, लेकिन आवश्यकता को जरूर पूरा करते हैं। तो जहां हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कई बार हमें ये संकल्प उठ सकता है, क्योंकि हमारे तन का तो हिसाब किताब चलता रहता है ना, हम सबको अपने हिसाब किताब यहाँ चुकतू करने हैं, हमें कर्मातीत होकर के वापस जाना है। आत्मा पूरे विकर्म विनाश करेगी अपने, तो उसकी कई विधियां हैं, उसमें तन के रोग के द्वारा भी वो हिसाब किताब चुकतू होते हैं हमारे। लेकिन तन की बीमारी आते हुए भी मन स्वस्थ है, आत्मा स्वस्थ है, और अगर आत्मा स्वस्थ है तो तन की बीमारी हमें बड़ी नहीं लगती। तन की बीमारी सूली से कांटा हो जाती है, उसका वो जो दर्द है, दुख है, वो हमें उतना महसूस नहीं होता, और इसीलिए वो थोड़े समय में ही हम उस हिसाब किताब को सहज चुकतू कर लेते हैं। बाबा तो हमें कहते हैं कि आजकल जो इतनी पैथियां निकली हैं, आज जो मेडिकल साइंस है वो कितना विकसित है, बहुत एडवांस है मेडिकल साइंस, तो वो किस लिए है, ये साइंस की इन्वेंशंस किसके लिए निकली हैं? बाबा क्या कहते हैं, आप बच्चों के लिए। आज इतने जो साधन है वो किसको सुख दे रहे हैं? हम सबसे ज्यादा वो तो फिर यूं भी कहते हैं कि चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला, तो हम सबसे ज्यादा उसका सदुपयोग कर रहे हैं। सुख तो सारी दुनिया को ही मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है, लेकिन वो होता है कि एक होता है सदुपयोग करना, एक होता है उसका दुरुपयोग करना। तो उसके सदुपयोग की बात जहां आती है, क्योंकि हमारे अंदर वो संयम है, हम नियम मर्यादाओं का पालन कर सकते हैं, वो शक्ति है हमारे अंदर, तो हम उसका सबसे ज्यादा लाभ उठाते हैं बाबा के बच्चे। तो इस तरह से बाबा कहता है जो भी दवाइयां हैं, डॉक्टर हैं, वो इलाज ले लो। बाबा तो अपने लिए नहीं कहता कि मैं डॉक्टर हूं, वो इलाज ले लो और जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाओ। तो हो भी जाते हैं बीमारियां, तो कोई सभी बहुत बड़ी नहीं होती हैं, कोई कोई होता है जिसको असाध्य बीमारी हो जाती, अब असाधी बीमारियां जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, हाँ तो किसी किसी को 99% लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन कोई 1% लोग होते हैं जिनको पहले से ही कई बीमारियां हैं, उनके लंग्स में अगर वो चला जाता है तो फिर समझो उसकी डेथ भी होती है। तो बाबा हमेशा क्या कहते हैं, आज की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा, हाँ हमने क्या पहना हुए हैं, सफेद कपड़े पहने हुए। तो सफेद कपड़े पहनने का मतलब क्या है, पहले ही मरजीवा जन्म है, पहले ही जीते जी मरे हुए हैं, तो अगर गए भी सही तो खुशी खुशी जाएंगे, ये शरीर भी छोड़ेंगे और अगर खुशी खुशी जाएंगे तो बाबा के पास ही जाएंगे, और बाबा आगे भी भेजेगा तो सेवा में ही भेजेगा। तो पता ही है कि हमारा भविष्य निश्चित है, भविष्य बहुत ऊंचा है, हम देवता बनने वाले हैं, आगे दो युग तो कितने श्रेष्ठ युग हैं, तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है किसी भी चीज को लेकर के। और भी कई बीमारियां हो जाती हैं, मानो किसी को कैंसर हो जाता है, हाँ या इस तरह की ऐसी कोई बीमारी हो जाती है, तो भी चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। तो उस स्थिति से हम आत्मा के रूप से सदा तंदुरुस्त हैं, शरीर अपना हिसाब किताब चुकतू करता है, और वो भी अगर हम बीमारी कॉन्शियस नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं कि कभी भी मन को कमजोर नहीं करना, बीमारी कॉन्शियस होना माना मैं बीमार हूँ मैं बीमार हूँ, सारा समय बीमारी का चिंतन चलता रहता है। कईयों को होता है बीमारी छोटी सी होगी लेकिन सोचेंगे इतना होगा, सिर्फ सिर दर्द, पर सारा दिन सिर दर्द है सिर दर्द है, और ना सिर्फ खुद सोचेंगे चार लोगों को सुनाते भी रहेंगे मेरे को सिर दर्द हो रहा है, या जहां भी दर्द हो रहा है, हाँ मेरे घुटने में दर्द हो रहा है या मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तो बाबा कहते हैं अभी घुटने दर्द और कमर दर्द का कोई थर्मामीटर तो है नहीं, लेकिन कर क्या रहे हैं, बार बार उसको सोचकर वर्णन करके हम क्या कर रहे हैं, बीमारी को बढ़ा रहे हैं। और जितना हम समा लेते हैं, बाबा की याद में है हमारी सहन शक्ति अच्छी होती है, तो अगर हमने उसको समा लिया तो बीमारी जल्दी विदाई ले लेती है। रूहानियत की जो शक्ति है जो बाबा से हमें मिलती है, वो बीमारी को जैसे कहा सूली से कांटा करती है और वो जल्दी खत्म हो जाती है। और ऐसे ही जो संपत्ति की बात है, तो बाबा हमेशा कहते हैं कि जो प्राप्तियां हमें होनी चाहिए ना, कई बार कई भाई बहने सोचते हैं कि अगर हम अधिक धनवान होते तो हम बहुत धन सेवा में लगाते, हाँ इतनी है क्योंकि इस समय धन को सेवा में लगाने का महत्व है, वो हमारा उतना भाग्य जमा होता है। और बाबा कहता है अगर आप करोड़पति होते तो ज्ञान में आते, आज के जो करोड़पति हैं वो ज्ञान में हैं, कोई कोई चलो ऐसे नहीं कि कोई कोई भी नहीं है, कोई कोई है जिनका भाग्य ऐसा है, लेकिन मेजॉरिटी बाबा के बच्चे जो हैं वो साधारण है, बाबा गरीब निवास है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि अगर बहुत धन होता तो ज्ञान में आते ही नहीं, माया ले जाती, वो तो समझते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तो भगवान का जो भाग्य हमें मिला है वो इसी कारण मिला है, तो हम ये भी ना सोचें कि धन होता तो हम सेवा करते। अगर हम सच्चे दिल से, बाबा हमेशा कहते मुरलियों में अगर एक रुपया हमने दिया और वो साहूकार ने 1000 रुपया दिया तो वो भी बराबर है, दिल से सेवा करने का महत्व है और वो निस्वार्थ सेवा का महत्व है, उसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ भाव नहीं होना चाहिए। तो ये इच्छा रखना, जैसे कहा कि ये साधन मिल जाए, तो बाबा ने कहा था एक बार कि अगर हम दाल रोटी भी खाते हैं तो वो भी 36 प्रकार के भोजन खाने के समान है, क्योंकि बाबा की याद में ईश्वरीय याद में वो दाल रोटी भी कैसी लगती है, 36 प्रकार के भोजन से ज्यादा सुख देती है वो, क्योंकि मन सुखी है। कोई 36 प्रकार का भोजन खा रहा है लेकिन मन अशांत है, मन टेंशन में है, हाँ मन दुखी है, तो वो भोजन कितना स्वादिष्ट लगेगा उसको, है ना। और इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि दाल रोटी खिलाने के लिए बाबा बंधा हुआ है, अंत तक भी जब विनाश की स्थितियां भी होंगी, जब खाने को भी नहीं मिलेगा, तो भी बाबा के बच्चों के लिए दाल रोटी जरूर मिलेगी, लेकिन वो दाल रोटी बाबा की याद की, वो भी ब्रह्मा भोजन है। हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं, भगवान की याद का भोजन खाते हैं। तो वो हमें नशा होना चाहिए कि हमें जो अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं उसके आगे ये स्थूल प्राप्तियां कुछ भी नहीं है, जो अविनाशी खजाने मिले हैं। और ऐसे ही अगर हम संबंधों की बात करें तो दुनिया में भी संबंधों में सुख होता है, जिनको सर्व संबंध है और उनमें सब सहयोग मिलता है, वो अपने जीवन में खुशी महसूस करते हैं, संतुष्ट भी रहते हैं। लेकिन फिर भी वो अविनाशी तो नहीं है ना संबंध। कई बार ऐसा होता है किसी की मृत्यु हो गई या कोई चला गया, जैसे माँ बाप बड़ी उम्र के हो गए, बच्चे विदेश में जाके रहने लग गए। अब माँ बाप ने बच्चों को पढ़ा लिखा करके लायक बनाया और वो बच्चे सुख देने की बजाय बुढ़ापे में अभी क्या हो रहा है, माता पिता को अकेले रहना पड़ रहा है। अगर वो विदेश में जाकर नहीं रहना चाहते, कईयों को नहीं पसंद होता विदेश का जो जीवन है उस तरह का, या फिर मानो पति की मृत्यु हो गई। अब आज का समय अकाल मृत्यु का समय है, कभी भी किसी का समय आ जाता है, या पत्नी की मृत्यु हो गई, या किसी के माँ बाप है, माँ बाप की छोटी आयु में मृत्यु हो गई, कोई ना कोई संबंध की कमी हो जाती है जीवन में। तो वो उनको महसूस होता है कि मेरे जीवन में ये कमी है। लेकिन बाबा से यहाँ हमारे सर्व संबंध हैं, और जब बाबा से सर्व संबंध हैं तो वो अविनाशी संबंध हैं, और वो पिता भी है, वो दोस्त भी हैं, वो साजन भी है, साथी भी है, जो संबंध जोड़ना चाहो और जिस समय जोड़ना चाहो। एक साकार से अगर संबंध जोड़ना है तो उसकी एक सीमा होती है ना, वो हर समय हमारे साथ नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ हर समय नहीं हो सकता। लेकिन बाबा तो सदा ही, जब हम दिल से कहें मेरा बाबा, बाबा कहते हैं ना, जब आपने दिल से कहा बाबा हाजिर है, बाबा बंधा हुआ है आपके लिए, हुजूर हाजिर है, इतना प्यार से बाबा कहते हैं, बच्चों के लिए कहते हैं मालिकम सलाम है। और फिर ये भी नहीं कि बाबा एक साथ सभी से संबंध निभा सकता है, कोई लिमिट नहीं है कि उसके साथ संबंध निभाने में बिजी था ना इसलिए मेरे पास नहीं आया, ऐसे कहेंगे क्या। उतनी उनकी बेहद की बाबा की शक्ति है, इसी को ही बाबा कहता है कि सब कुछ बहुत कुदरत है। जैसे आत्मा के लिए कहते हैं कि इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, हम नहीं समझ सकते, वो एक कुदरत है। ऐसे ही बाबा की जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां कितनी बेहद की हैं वो हमारी समझ से परे है, कि एक ही साथ बाबा जिसको जो अनुभूति कराना चाहे वो अनुभूति बाबा करा देता है। तो सर्व संबंध किसके साथ है हमारे, वो नशा और खुशी हमें सदा रहे कि जब हम बाबा से संबंध निभाना चाहें हम बाबा से संबंध निभाएं। और फिर साथ साथ बाबा ने हमें दैवी परिवार दिया है, इतना श्रेष्ठ परिवार, इतना ऊंचा परिवार, इतना पवित्र परिवार होगा किसी का, और छोटा मोटा भी नहीं, कितना बेहद का है, लाखों का परिवार और करोड़ों में होने वाला है, और सब एक दो से विशेषता संपन्न आत्माएं हैं, अगर हम कमी ना देखें तो। नहीं तो जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो हम असंतुष्ट होते हैं कई बार, कईयों की आदत ही होती है असंतुष्ट होने की। अभी जैसे बाबा ने मुरली चलाई ना, तीन माला बाबा ने बनाई, तो पहली माला कौन सी थी, जो सदा संतुष्ट रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, माना हमेशा उनकी दृष्टि वृत्ति कृति में सबको संतुष्टता की अनुभूति होती है। तो वो बहुत थोड़े थे, बाबा ने कहा ना वो माला बहुत छोटी थी। दूसरे प्रकार की माला जो थी उसमें कभी कभी किसी व्यक्ति से असंतुष्ट, कभी परिस्थिति से असंतुष्ट, कभी वायुमंडल से असंतुष्ट, माना थोड़ी थोड़ी संतुष्टता की छाया उन पर आती थी, लेकिन ज्यादा समय नहीं रहती, असंतुष्टता आई और फिर हम ज्ञान जानते हैं तो फिर अपने आप को ज्ञान से संतुष्ट कर लिया तो फिर बाहर निकल आते हैं, माना सिर्फ छाया मात्र आती है बाबा ने कहा और फिर संतुष्ट हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो दूसरी माला वाले हैं वो पहली माला में आ जाएं। और तीसरे प्रकार की जो माला थी वो तो है ही असंतुष्ट आत्मा, कभी बोल की, कभी संकल्प की, कभी कर्म की, कभी संबंध संपर्क की असंतुष्टता, कोई ना कोई असंतुष्टता के चक्र में घूमते ही रहते हैं, माना उसमें फंसे हुए ही हैं। तो ऐसे लोग नेगेटिव होते हैं, कहने का मतलब ये है कि कहा वो, जैसे बाबा ने हमें कहा गुणग्राही बनना है, माना आत्मा में अगर 36 गुणों में 35 अवगुण है, एक ही गुण है तो भी एक गुण ही हमें देख लेना है उसके अंदर। आत्मा का जो अनादि आदि स्वरूप है वो हम देखें, जैसे आज की मुरली में वरदान था ना, वही हमें दिखाई दे। लेकिन उन लोगों की आदत होती है कि अगर 35 गुण होंगे और उसमें से भी एक अवगुण होगा, किसी के अंदर 35 गुण है पर एक अवगुण है तो क्या दिखाई देगा, वो अवगुण ही दिखाई देगा, माना वो दृष्टि ही नेगेटिव है, तो वृत्ति भी नेगेटिव हो गई और फिर उसका प्रभाव व्यवहार पर आएगा, कृति पर आएगा। और इस तरह से हम कभी भी दूसरों के संबंध संपर्क में आते हुए संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। तो ये अपनी चेकिंग हमें करना है। बाबा तो हमें कहते हैं कि अगर मानो कोई हम पर गुस्सा करता है, रोज की बात होती है, रोज की दिनचर्या में ऐसा हो ही जाता है कि कोई ना कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर देता है, कोई हमारी इंसल्ट कर देता है, या कोई हमें अपशब्द बोल देता है, कोई हमारी ग्लानी की बात हमें कर देता है, तो फिर हम संतुष्ट रहेंगे उनसे? क्या कहेंगे? रहो, पर हम रह पाते हैं? कोशिश करते हैं। तो ये हमारे लिए जैसे बाबा कहते हैं ना कि पेपर हैं, क्योंकि जो शक्तियां बाबा ने हमें दी उन शक्तियों के आधार से हम संतुष्ट रह सकते हैं। सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, सहयोग देने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, और भी शक्तियों में जैसे हम कहेंगे स्नेह भी एक गुण भी है तो एक शक्ति भी है, उसके साथ रहम की भावना, कल्याण की भावना, शुभ भावना, तो ये सब अगर हमारे अंदर है तो फिर हमारे लिए संतुष्ट रहना सहज हो जाता है। फिर कोई कहते हैं हम कहाँ तक सहन करेंगे, सहन करने की भी तो कोई सीमा होती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, कितनी बार हो गया, एक बार तो जवाब देना ही पड़ेगा, एक बार दे दो बस फिर ठीक है, ऐसा हम सोचते हैं कि हम सहन करते जाएंगे तो ये हमें कमजोरी समझते हैं। तो बाबा कई बार कहते हैं कि आप अगर सहन करते हैं तो किसकी आज्ञा से सहन करते हैं, बाबा की आज्ञा से। कई तो ऐसे भी कहते हैं कि क्या मुझे ही मरना है, कब तक मरते रहेंगे। तो मरना, बाबा ने कहा ये मरना माना अधिकार लेना है, हम मर्जीवा जन्म दिया तो भगवान के सभी वर्षे के अधिकारी बन गए ना, तो ये क्योंकि बाबा की आज्ञा से हमने सहन किया, उसमें बाबा की दुआएं हैं। और अगर हमने सहन कर लिया और साथ में समा भी दिया, कई बार क्या करते हैं सहन तो कर लेते हैं लेकिन फिर समा नहीं पाते उसको, उस समय तो चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं कहते, लेकिन वो जो शुभ भावना हमारी उस आत्मा के प्रति रहनी चाहिए वो नहीं रह पाती, तो हम चार लोगों को जाकर के उसको सुना देते हैं, आज ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, जो भी हमारे मन की उनके प्रति भाव चले वो हमने दूसरों को जाकर के सुना दिया अपने मन को हल्का करने के लिए। तो बाबा कहते हैं सहन किया वो तो चलो कमाल की, लेकिन अगर उसको समाया नहीं तो उस कमाल को धमाल में बदल दिया। तो फिर वो भी जमा नहीं होता, यानी हमने पेपर पास नहीं किया, जो पेपर हमारे सामने आया उस पेपर में हम फेल हो गए, तो हम तो असंतुष्ट हुए, सुबह हमने दूसरों को भी असंतुष्ट कर दिया, उस वाइब्रेशन को हमने फैलाया। और इसीलिए बाबा ने मुरली में कहा था कि संतुष्टता वाली जो आत्मा है वो सर्व सर्कमस्टांसेस को, समस्याओं को क्या कर लेगी, समाधान में बदल लेगी, उसके सामने समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, या वो सफलता स्वरूप आत्मा होगी, समस्या उसे समस्या लगेगी ही नहीं। क्योंकि अगर हम संतुष्ट हैं तो हम दूसरी आत्मा को भी वही वाइब्रेशन देते हैं, वो अनुभव हम कराते हैं, तो उनकी नेगेटिविटी भी खत्म हो जाती है। तो संबंधों में जहां हम आते हैं वहां हमारा सबसे बड़ा टेस्ट पेपर होता है। ज्यादा असंतुष्टता संबंध संपर्क में ही होती है, कभी कभी स्वयं से भी होती है, जितना पुरुषार्थ हम करना चाहते हैं, जैसा पुरुषार्थ हम करना चाहते हैं, उस पुरुषार्थ में कोई कमजोरी है या हमारा कोई ऐसा संस्कार है जिस पर हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो संस्कार भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, थोड़ा समय के लिए दब तो जाता है लेकिन जैसे ही फिर कोई परिस्थिति आती है फिर वो संस्कार हमारा इमर्ज हो जाता है, तो फिर हम अपने आप से ही दुखी हो जाते हैं, फिर छोड़ भी देते हैं कई बार कि मेरे से तो नहीं होता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, फिर बाबा को भी कहते हैं। तो बाबा कहता है कि कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरा ये संस्कार चेंज नहीं हो सकता, क्या सोचना है, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। हो सकता है कि वो हमें थोड़ा टाइम लगता है, कोई संस्कार बहुत कड़े होते हैं उसमें थोड़ा हमें अटेंशन देना पड़ता है, क्योंकि वो संस्कार बनने में भी तो टाइम लगा ना, तो संस्कार जाने में भी कई बार थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमें अपना धीरज और दृढ़ संकल्प नहीं छोड़ना है, हिम्मत है तो बाबा की मदद है ही है और वो संस्कार हमारा बदल जाता है। तो स्वयं के पुरुषार्थ से भी, चाहे वो अमृत वेला हो, कोई भी बात हो, अमृत वेला भी कई समझते हैं मेरा अमृत वेला इतना पावरफुल नहीं होता, अमृत वेला नींद आ जाती है हमको, हम इतना उठते तो हैं लेकिन उतना अनुभव नहीं होता जो हमें होना चाहिए। तो यहाँ भी कि रात को सोने से पहले हम किस स्थिति में सोए उसका प्रभाव हमारे अमृत वेले पर पड़ता है। तो बाबा हमेशा कहता है अपनी बुद्धि को खाली करके सो, बाबा को सारा चार्ट दो, और अगर आप बाबा को चार्ट दे करके और बाबा की याद में सोएंगे तो फिर जब सुबह उठेंगे तो उसी तरह के संकल्प मन में चलेंगे, और हमें स्मृतियों को श्रेष्ठ बनाना है, ऐसे नहीं सीधा बिंदी को याद किया परम धाम में पहुंचे, अमृत वेले का टाइम भी शांति का ही होता है, तो कई परम धाम में जाकर के बाबा से योग लगाते हैं तो फिर पूरी तरह से शांति में चले जाते हैं। तो उस समय पहले हम अपनी सारी प्राप्तियों को याद करें जो हमें बाबा से मिली है, तो जो स्वमान की प्राप्तियां हैं, बाबा ने हमें जो नाम मान शान दिया है, जैसे बात हो रही थी कि सूक्ष्म प्राप्तियों की भी इच्छा होती है इंसान को, तो कई बार सोचते हैं नाम के बारे में कि हमारा नाम तो लेते ही नहीं है किसी में, या हमें तो पूछते ही नहीं है, या हम काम करते हैं सेवा करते हैं लेकिन नाम तो दूसरे का हो जाता है, सब कुछ तो हम करते हैं, तो ऐसे कुछ कुछ संकल्प अपने नाम के बारे में कईयों को चल जाता है कि कोई भी सेवा के प्रोग्राम में तो मेरा नाम आता ही नहीं है। तो बाबा कहता है कि ये हद का नाम, अगर हम इस तरह के संकल्प करते हैं तो ये हद के नाम की बात, लेकिन जो बाबा ने हमें नाम दिया है, माना बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण कुल भूषण बनाया है, और ब्राह्मण नाम आज तक भी ऊंच माना जाता है, आज तक भी सबसे ऊंची जाति कौन सी मानी जाती है, ब्राह्मण। तो भगवान ने इतना ऊंचा नाम हमें दिया है कि जो नामधारी ब्राह्मण है इस संसार में, जो रियल कर्म से ब्राह्मण नहीं है, आजकल कर्म से तो ब्राह्मण नहीं के बराबर है, जो नामधारी ब्राह्मण है वो भी अपना उस नाम से शरीर निर्वाह कर रहे हैं, उससे ही उनका धन कमाने का साधन बना हुआ है, ऐसा नाम भगवान ने हमें दिया है कि वो हमारे ही नाम की यादगार चल रही है। और फिर खुद भगवान हमारा नाम लेता है। बच्चों के नाम की माला का सिमरन कौन करता है? खुद भगवान करते हैं। भक्त भगवान के नाम की माला का सिमरन करते हैं ना, वो जो माला फेरते हैं वो किसका सिमरन कर रहे हैं? भक्त भगवान का जाप कर रहे हैं। और भगवान किसके नाम का जाप करता है? हम बच्चों को बाबा याद करते हैं, रोज नहीं करते हैं, क्या कहेंगे? जैसे वो कहानी बताते हैं ना हनुमान जी की, और कहानी सुनी होगी कि वो गए भगवान के पास तो देखा भगवान कोई डायरी देख रहे हैं, विष्णु जी के पास, उनके भगवान विष्णु थे। तो उन्होंने पूछा भगवान क्या देख रहे हैं, तो बोला मैं उन भक्तों को देख रहा हूँ जो मुझे बहुत याद करते हैं। तो नारद जी तो बहुत खुश हुए क्योंकि उनको था कि मैं तो भगवान का परम भक्त हूँ, तो कहा भगवान मेरा नाम कहाँ है इसमें? तो उन्होंने दिखाया तो देखा सबसे ऊंचा उनका नाम, मतलब सबसे नंबर वन नारद जी का नाम था। फिर उनको हनुमान जी से ईर्ष्या थी तो उन्होंने देखा इसमें हनुमान जी का नाम कहाँ है, तो देखा हनुमान जी का नाम जो था सबसे लास्ट में था, तो वो बहुत खुश हो गए। और फिर नारद जी तो रह नहीं सकते बिना कहे, वो तो उनका रोल ही था, तो तुरंत पहुंच गए हनुमान जी के पास, कहा कि आज मैंने डायरी देखी और उसमें आपका नाम जो था वो सबसे नीचे था। फिर दूसरे दिन गए तो देखा फिर भगवान देख रहे हैं कोई डायरी, तो देखा कि वो जो डायरी है वो छोटी है। तो पूछा भगवान आज कौन सा देख रहे हैं? तो बोला आज वो देख रहा हूं जो मैं सबको याद करता हूं। तो फिर कहा अच्छा मेरा नाम कहाँ है इसमें? तो उन्होंने दिखाया, डायरी दिखाई, तो देखा उसमें तो नारद जी का नाम ही नहीं है। फिर देखा हनुमान जी का कहाँ है, तो हनुमान जी का नाम कहाँ था? नंबर वन। तो हम कौन सी लिस्ट में है? जिनको भगवान खुद याद करता है। तो हमारा नाम भगवान की लिस्ट में है, ये कितना ऊंचा नाम है। और फिर दूसरा, भगवान ने हमें कितने श्रेष्ठ स्वमान दिए हैं, ऐसे स्वमान जो दुनिया में किसी को नहीं, ऐसे टाइटल हमें जो मिले हैं दुनिया में, कितने भी बड़े से बड़े पोस्ट वाले लोग हों उनको भी टाइटल नहीं है। और बाबा कहता है कि आपके जो जड़ चित्र हैं उनकी भी लोग कितने सम्मान से पूजा करते हैं। किसी भी मंदिर में जाओ, हर एक देवता की कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। तो जब जड़ चित्रों का इतना मान है, तो जब चैतन्य में होंगे तो क्या मान नहीं होगा? मान है, तभी तो जड़ चित्रों को मान मिलता है। फिर भगवान हमें अपने से भी डबल पूज्य बनाते हैं। बच्चों की पूजा जो है वो साकार रूप में भी होती है और निराकार रूप में भी होती है। तो जब स्वयं भगवान ने हमें मान दिया है, तो फिर मनुष्य आत्माओं का मान उसके आगे क्या करेगा? फिर बाबा कहता है अगर आप स्वमान में रहेंगे तो अपने आप आपको मान मिलेगा, अगर मान नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो स्वमान के हम स्मृति स्वरूप नहीं है। और दूसरा, मान देने से मान मिलता है, जितना हम दूसरों को देंगे उतना हमें मान मिलता है। शान के लिए बाबा कहते हैं कि जो ताज तख्त का शान होता है वो सबसे ऊंचा होता है, और हम बाबा के दिल तख्त नशीन हैं, दिल तख्त नशीन है, और फिर भविष्य में राज्य तख्त पर बैठने वाले हैं। तो वो शान भी बाबा ने हमें दे रखा है। लेकिन इसमें बाबा हमें एक बात अंडरलाइन कराते हैं कि अभिमान नहीं आना चाहिए, नहीं तो कई बार अगर अभिमान होता है उसकी निशानी है कि बहुत जल्दी अपमान की फीलिंग आ जाएगी। कोई छोटी भी बात कह देगा तो भी फीलिंग आ जाएगी, कोई हंसी में भी कोई बात कह दी किसी ने तो भी फीलिंग आ जाएगी उसकी। और फीलिंग माना खुशी गुम, मूड ऑफ हो जाएगा हमारा, हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, फिर योग हमारा नहीं लगेगा, इसने मुझे ऐसा कहा, ऐसा कैसे कहा, ये क्या समझते हैं, फिर हम उसके प्रति दूसरी बदले की भावना में आ जाएंगे, फिर उनका अपमान करने की हम कोशिश करेंगे, तो उसकी पूरा पूरा चैन शुरू हो जाता है फिर। तो स्वमान माना देह अभिमान से मुक्त, अभिमान का अंश वंश भी नहीं, जितना स्वमान उतना निर्माण, ये सही अर्थों में स्वमान है। तो बाबा ने हमें ये सब प्राप्तियां कराई हैं, लेकिन उनका स्मृति स्वरूप बनना है हमको। जो अविनाशी खजाने दिए वो एक जन्म के लिए नहीं, आने वाले 21 जन्म तो गारंटी है, लेकिन बाबा ने कहा लगभग पूरा कल्प ही ये भाग्य हमारे साथ चलता है। पौना कल्प तो बाबा कहते ही हैं, लेकिन लास्ट के जो 2-4 जन्म है वो ज्यादा हिसाब किताब वाले होते हैं, नहीं तो बाकी पूरा कल्प हम आत्माएं इन प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। तो जब इतनी बेहद की प्राप्ति बाबा ने कराई है तो फिर किस क्यों असंतुष्ट होना है। तो जब भी ऐसी कोई बात आती है, कोई समस्या आती है, कोई परिस्थिति आती है, जैसे बाबा ने कहा ना कि संतुष्टता की निशानी क्या है, वो सर्व से, दिल से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे, वो सदा निर्दोष और निस्वार्थ दृष्टि वृत्ति वाले होंगे, तभी प्रसन्न रह सकते हैं। किसी के ऊपर दोष नहीं रखेंगे, भगवान के ऊपर भी नहीं कि भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य ऐसा बनाया, या ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है। ड्रामा में अपने पार्ट से असंतुष्ट हो जाए कि बाबा ने क्यों हमें प्रवृत्ति वाला बना दिया, इससे तो मैं कुमारी होती, संगम युग में कुमारी होना कितना श्रेष्ठ भाग्य है, क्यों मैं अधर कुमारी बन गई, या क्यों हम अधर कुमार बन गए, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। जहां जो पार्ट में हम हैं, बाबा ने ये नहीं कहा कि कोई अधर कुमार अधर कुमारी है तो वो संपन्न और संपूर्ण नहीं बन सकते, कहां बाबा ने किसी मुरली में। ब्रह्मा बाबा क्या थे, अधर कुमार थे या नहीं थे, फिर संपन्न बने कि नहीं बने, फॉलो फादर करना है ना, तो फिर हम नहीं बन सकते क्या। और ब्रह्मा बाबा की आयु कितनी थी, कई बार सोचते हैं भगवान हम बूढ़े हो गए तब हमें क्यों ज्ञान मिला, अभी हम उतना पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। बाबा को क्यों, कौन सी आयु में ज्ञान मिला, 60 साल की आयु थी तब मिला ना ज्ञान, तो बाबा ने पुरुषार्थ किया नहीं किया। तो इसीलिए जिस पार्ट में भी हम हैं, उस पार्ट में रहते हुए हम जो बाबा कहता है वो सब कर सकते हैं, उसकी कोई हद नहीं है। तो मतलब हर पार्ट में संतुष्ट, उस पार्ट में संतुष्ट रहते हुए ड्रामा में जो पार्ट मिला है हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर ऐसे ही कि उस आत्मा का स्वभाव संस्कार ऐसा है, ये बदल जाए ना, अगर ये मेरे से दूर चले जाए तो मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाएगा, इसके कारण ही मैं असंतुष्ट रहती हूँ, तो वो आत्मा कारण है क्या, हम कारण है क्या कहेंगे। तो किसी आत्मा के स्वभाव संस्कार से भी नहीं, माना उनके ऊपर भी दोष नहीं रखना, निर्दोष माना किसी के ऊपर दोष नहीं रखना है। फिर ऐसे भी नहीं प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, अभी जैसे ये प्रकृति ने पेपर लिया हमसे, तो हमारे लिए तो और ही वरदान हो गया ना, ब्राह्मणों के को समय मिला, कितना समय मिला पुरुषार्थ करने का, तीव्र पुरुषार्थ करने का, बाबा से योग लगाने का समय मिला नहीं मिला, कोरोना में सब लॉकडाउन में घर बैठ गए, तो हमारे लिए तो हमें तो क्या चाहिए, समय ही चाहिए ना, नहीं तो प्रवृत्ति में कितना व्यस्त होते हैं, जितना समय निकालना चाहते हैं उतना तो नहीं निकाल पाते। तो अगर हम उसको ऐसे देखेंगे तो कभी भी हम दोष नहीं देंगे, उसमें भी हमारा कल्याण है। बाबा कहते हैं अपने कल्याण की बात निकाल लो, कोई भी परिस्थिति आती है तो जितना हम निर्दोष निस्वार्थ रहेंगे, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे प्रकृति हो, भगवान के ऊपर भी दोष नहीं, किसी भी है ही नहीं, बाबा का तो दोष है ही नहीं, वो तो हमारे लिए सदा ही कल्याणकारी है, तो सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे। तो संतुष्टता ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है और प्रसन्नता पर्सनालिटी है। तो सदा ही अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी को हमें यूज करना है। और बाबा ने मुरली में कहा कि अगर ऐसा नहीं करते तो हम नामधारी ब्राह्मण हुए, फिर हम सच्चे ब्राह्मण हैं ही नहीं। तो संतुष्टता की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी में रहने वाले। ओम शांति।